نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء میرا عذاب پہنچتا ہے اس کو جس کو میں چاہوں لیکن میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز اس کی رحمت کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جس کی وجہ سے جانور ایک دوسرے کے اوپر رحم کا معاملہ کرتے ہیں، درندے بھی اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کی وجہ سے، اور باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانیت کے اوپر ظاہر فرمائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی مخلوق، یعنی جتنی ہے مخلوق، چاہے کوئی چرند ہے، پرند ہے، جانور ہے، انسان ہے، جنات ہیں، جن میں بھی کوئی ذرہ برابر بھی رحم کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے ایک حصے کا چھوٹا سا ادنا سا حصہ ہے جو اس کو ملا ہوا، جس کی وجہ سے وہ رحم کرتا ہے دوسروں کے اوپر۔ اور اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ رحمان اور رحیم کس قدر رحم کرنے والا ہوگا کہ جس نے اپنی رحمت کے ایک حصے میں سے ساری دنیا کے انسانوں اور سب کو، جتنی اس کی مخلوق ہے، اس کو بھر دیا، تو سوچیں کہ اس کے پاس رحمت کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھا ہے کہ انّا رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر سبقت لے جاتی، اس کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں، حالانکہ اس کو یاد دلانے کی کوئی چیز ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں بتانے کے لیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ اب رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ مہربانی، وہ نرم دلی جس کی وجہ سے کوئی دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دے، کوتاہیوں کو معاف کر دے، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک انسان ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہے تو ایک دفعہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی وجہ سے کہ وہ بے پرواہ ہے، اس کے اندر اتنی نرمی ہے، اتنی شفقت ہے، اس قدر مہربانی ہے اپنی مخلوق کے لیے کہ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے کیا پہلے کیا، کیا کتنا عرصہ کرتا رہا اور اب آ کے میرے پاس معافی مانگ رہا ہے، بلکہ اس کو آپ جب ایک دفعہ پلٹ کے دکھاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ اسی کے اوپر آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کی اس رحمت کی وجہ سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، چاہے کوئی گناہ گار ہے، کافر ہے، مشرق ہے، مرتد ہے، منافق ہے یا مومن ہے، ہر ایک کے اوپر اس کی رحمت ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو انسانوں میں کوئی کتنا بھی رحم کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کو کوئی نہ مانے یا اس کو کوئی گالی دے یا اس کو کوئی برا بھلا کہے، تو وہ ایک دن سنتا ہے، 2 دن سنتا ہے، 10 دن سنتا ہے، 20 دن سنتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے میری بس ہو گئی، انف ناؤ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، وہ رحمان ہے، بار بار رحم فرماتا ہے، بار بار رحم فرماتا ہے، بار بار رحم فرماتا ہے، اور تھکتا نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، ان کے اوپر بھی رحم فرماتا ہے جو اس کو نہیں مانتے اور جو اس کو گالی دیتے ہیں، اور گالی دینا کیا ہے انسانوں کا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی اولاد ٹھہرانا. وہ ان کو بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کو بھی سروائیول دیتا ہے، سسٹین کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کرم ہے کہ جس کی وجہ سے زمین پہ لوگ چل پھر رہے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ پکڑنے لگے نا تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تو زمین پہ کوئی جاندار چلتا پھرتا نہ تم دیکھو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الناس، اے انسانیت، تمام انسانوں، انتم الفقراء، تم فقیر ہو اللہ کے، تم سب محتاج ہو اللہ کے. یعنی تم سب کو ضرورت ہے اللہ کی رحمت کی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ بھی ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے. اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہی مانگ رہا ہوتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے اللہ یہ بھی بے بس، یہ بھی فقیر ہے، تو یہ مجھے کیا دے گا جو خود بھی محتاج ہے. کسی کے پاس کتنا کچھ بھی ہو جائے، اس پوری زمین کی دولت بھی ہو جائے، تب بھی وہ محتاج ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانوں تم سارے ہی محتاج ہو، صرف اللہ کی ذات کے، واللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ اس کو کسی کی محتاجی نہیں، اس کو کسی کی احتیاج نہیں، وہ حمید ہے، وہ اپنے آپ میں تعریف والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایسی ہے جس کو کوئی محتاج نہیں، باقی کائنات میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں محتاج نہیں ہوں. چاہے کسی کو اللہ نے کتنا ہی کیوں نہ دیا ہو، وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، بے نیاز ذات صرف اللہ کی ہے. ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنے خود عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں بھی نہیں، میں بھی صرف اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے ایسا کہ جو یہ کہہ سکے کہ مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں. چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. اب اس سے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم سب کو کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ کی رحمت کی. ٹھیک ہے، یہ بات ہم سمجھتے ہیں نا، پل پل ضرورت ہے ہمیں اللہ کی رحمت کی. اس کے باوجود ہم سے دانستہ یا نادانستہ طور پر، کانشیسلی اور انکانشیسلی، کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے ہمیں دور کر دیتے ہیں. آج ہم نے دیکھنا کہ وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. دیکھیں، ایک رحمت ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اللہ کی سب پر ہے، کافروں پر ہے، مرتدوں پر ہے، مشرکوں پر ہے، سب پہ ہے. لیکن ایک اللہ کی خاص رحمت ہے جو مومنوں پر ہوتی ہے. ویسے تو اللہ آپ کو کھلاتا بھی رہے گا، پلاتا بھی رہے گا، سب ہے. ہم کہتے ہیں اگر میں وہ کام کر رہی ہوں تو میں کیسے کھا پی رہی ہوں، میں کیسے زندہ بیٹھی ہوئی ہوں، میں پھر یہ پھر میرے سے سب کچھ چھن کیوں نہیں رہا اگر میں کچھ غلط کر رہی ہوں. وہ اس لیے کہ اللہ کی جو عمومی رحمت سب کے لیے ہے وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن اس کی جو خاص رحمت ہے جس کی بنا پر ہم نے جنت میں جانا ہے، جس کی امید ہم رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ رحمت دے دے گا جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، اور اللہ کی اور خصوصی جو رحمتیں ایمان والوں پر ہوتی ہیں، اس سے انسان دور ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. اور رحمت کا اپوزٹ، رحمت کا اپوزٹ کیا ہے؟ لعنت. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور ذلیل و خوار ہو جانا. رحمت سے، خیر سے، بھلائی سے محروم ہو کے ذلیل ہو جانا، رسوا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں لعنت. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہو جاتی ہے، جن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت ہوتی ہے، یا جن کے اوپر فرشتوں کی طرف سے لعنت ہوتی ہے. ہم نے آج دیکھنا ہے کہ کہیں میں ان میں سے کسی کام کو تو نہیں کر رہی. میں اللہ کی رحمت کی امید تو رکھتی ہوں، لیکن میں کوئی ایسا کام کر رہی ہوں جو لعنت میں مجھے شامل کر دے، لعنت والوں میں شامل کر دے. کہیں مجھ سے تو نہیں ایسا کوئی کام ہو رہا؟ تو سب سے پہلی تو یہ بات کہ لعنت اتنی بری چیز ہے، لعنت اتنی بری چیز ہے کہ یہ ایک، سمجھ لیں، بد دعا ہے. یہ ایک بد دعا ہے، اور اس سے منع کیا گیا کہ آپ کسی کے اوپر لعنت نہ بھیجیں.
چونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کسی کو کہہ دینا کہ جی آپ, یعنی جب آپ کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں, اس کے اوپر لعنت ہو, فلاں پہ لعنت ہو, ہم تو بیٹھے ہوئے آرام سے ہی کہہ دیتے ہیں فلاں پہ لعنت ہو, تو اصل میں ہم پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کرے کہ یہ ساری خیر اور بھلائی سے محروم ہو جائے اور ذلیل ہو جائیے. تو کوئی عورتیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے اوپر کر رہی ہوتی ہیں, کئی کسی کو دیکھ لیتی اس کے اوپر لعنت کرنے لگ پڑتی ہیں. اسی لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی, تو کیا فرمایا تھا کہ کیا وجہ ہے اس کی, اس کی وجہ فرمایا تھا کہ یہ عورتیں لعنت بہت کرتی ہیں اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اتنی بری چیز ہے لعنت کرنا. تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ لعنت از ناٹ کہ کوئی ایسے ہی بس چلتے پھرتے کسی فلانا لعنتی فلانا یہ فلانا, نہیں ایسے نہیں ہم کر سکتے. ایون یہاں تک کہ ایک انصاری عورت اونٹنی پہ سوار جا رہی تھی, تو اس نے, اب کچھ ہوا بات تو اس نے اونٹنی کو جھڑکا اور اس کے اوپر لعنت بھیجی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اپنا سامان اس کے اوپر سے اتار لو, اتر آؤ اس کے اوپر سے اور اس اونٹنی کو آزاد کر دو کیونکہ تم نے اب اس کے اوپر لعنت بھیج دی. سمجھائی نا بات, کہ یعنی جانور پہ بھی نہ لعنت بھیجو, اتنی بری چیز ہے یہ. تو آپ سوچیں جو رب اتنا رحمتوں والا ہے, اس کا مطلب کوئی کام اس کو اتنے برے لگتے ہیں کہ اس نے کہہ دیا کہ میری رحمت سے یہ محروم ہے, میری رحمت کے قابل نہیں ہے. اب ان میں سب سے بڑا تو آپ ایک مثال سے سمجھ جائیں گے جو شیطان ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, ہم نے ابھی سورہ سعد میں پڑھا ہے, وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اس کے اوپر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک, یعنی اس وقت تک نہ اس کو توبہ کی توفیق ملے گی, نہ اس کے اوپر اللہ کی کوئی رحمت ہوگی, نہ اس کو کوئی خیر پہنچے گی, یہ ذلیل ہی رہے گا قیامت تک. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے, ایک مثال پتہ چل گئی کہ وہ شیطان ہے جس کو لعنت زدہ کیا گیا, اور اس سے آپ دیکھ لیں کہ وہ کس حد پہ پہنچ گیا. اسی طرح اگر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مومن دوسرے کو لعنت کرتا ہے تو یہ ایسے ہی جیسے اس کو قتل کر دینا, قتل کرنے کے برابر ہے, اتنی یہ بڑی چیز ہے, یعنی معمولی بات نہیں ہے. تو ہم اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر اتنی ناراضگی فرمائی ہے کہ ان کے اوپر لعنت فرما دی. وہ رحمان, وہ رحیم رب کسی پہ لعنت فرما دے, کسی ایکشن پہ, کسی عمل کے اوپر, کسی کے اس عمل کو کرنے والے پہ لعنت فرما دے, تو وہ عمل کس قدر کبھی ہوگا اللہ کی نظر میں, چاہے مجھے اور آپ کو نہ لگتا ہو سکتا ہے, میں اور آپ کو ہو سکتا ہے اس کو معمولی سمجھتے ہوں, نہ سمجھتے ہوں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت برا ہے. اور اصل بات تو یہی ہوتی کہ اللہ کی نظر میں کوئی عمل کیسا ہے. تو کچھ لوگوں کے اوپر تو لعنت قرآن میں ہی بھیجی گئی, جیسے اب میں نے آپ کو بتایا شیطان کی بات ہو گئی. اسی طرح کافروں پر, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, جو لوگ کافر ہیں اور وہ کفر میں ہی مر گئے, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت, لوگوں کی, ملائکہ کی بھی لعنت اور لوگوں کی بھی لعنت ہے. خالدین فیہ, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کفر اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. اسی طرح شرک, اسی طرح مرتد جو انسان ہو جائے اس کے اوپر بھی لعنت ہے, یہ قرآن میں ہے. اسی طرح قرآن کریم میں سورہ نور میں وہ جو بھولی بھالی معصوم عورتوں کے اوپر تہمت لگا دے اس کے اوپر بھی لعنت ہے. یعنی عورتیں بعض دفعہ یہ سوچتی نہیں ہیں کہ وہ کتنی بڑی بات منہ سے نکال رہی ہیں, اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں ہم کہ کوئی بات نہیں, کسی کے اوپر بھی کوئی بات کہہ دی کہ وہ میں نے اس کو فلانی جگہ جاتے ہوئے دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے یہ کام خراب ہے, فلاں ان کے گھر بڑی گاڑیاں آتی ہیں, یہ ایسا ہے, یہ ایسی ہے, اس کا شوہر سر پہ نہیں ہے تو یہ ایسی ہے, کچھ بھی اپنے منہ سے بول دیتے ہیں جبکہ ہمارے پاس کوئی چار گواہ نہیں ہوتے. لیکن ہم کسی کے کیریکٹر پہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر تہمت لگا رہے تھے, یہ گناہ کبیرہ اور اس کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے. تو جو عورتیں ایسا کریں تو آپ سوچیں کہ وہ اللہ کی لعنت میں آ گئی. اسی طرح قرآن کریم میں جھوٹوں پر لعنت کی گئی ہے, اور جھوٹ اتنی کامن چیز ہے कि हम इसको कोई बुराई समझते ही नहीं, हम इसको पार्ट ऑफ लाइफ समझते हैं कि झूठ के बगैर क्या होता है, इधर झूठ बोल दिया उधर झूठ बोल दिया, झूठ और फरेब तो आम जिंदगी की चीज़ें बन गई हैं, ऐसी लाजिम व मलजूम बन गई। जबकि हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इंसान झूठ बोलता है तो झूठ जो है फजूर है, यानी बुराई है, बदी है, वो झूठ बोलता है और बोलता चला जाता है हत्ता कि उसको झूठों में लिख लिया जाता है अल्लाह के यहाँ। और झूठ क्या है, वो फजूर है, और फजूर किधर लेकर जाता है, जहन्नुम की तरफ, जन्नत में तो नहीं लेकर जाता, बुराई जन्नत में तो नहीं लेके जाएगी। झूठों पर लानत डाल दी गई। अगर हमारी जिंदगी में झूठ है तो फिर हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह एक और चीज जो बहुत ज्यादा हमारे अंदर कॉमन है वो ये है कताए रहमी करना, रिश्तों को तोड़ना, रिश्तों को काटना, भाई भाई से नाराज है, बहन बहन से नाराज है, खाला भांजी भतीजी नाराज है, खाला भांजी नाराज है, पुप्पी भतीजी नाराज है, माँ बाप के साथ बात नहीं कर रहे औलाद, ये क्या है, कताए रहमी है। रिश्तों को काटना इस कदर बुरी चीज है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रिश्तों को काटने वाले के ऊपर लानत फरमाई है। क्योंकि ये रहम जो है, ये यूट्रस जो है, जब अल्लाह ने ये सब बनाए थी मखलूक, तो ये अल्लाह ताला को इसने फरियाद की थी कि या अल्लाह लोग मुझे काटेंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया जो तुझे काटेगा मैं उसे काटूंगा, मैं उसे अपने से दूर करूंगा, जो तुझे मिलाएगा मैं उससे मिलूंगा। पुल सिरात के ऊपर दो चीजें हैं जो खड़ी होंगी, जो उस वक्त भी इंसान को रोक लेंगी, अमानत और रहम। ये सिला रहमी जो है ये इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं नहीं उसने भी मेरे साथ ऐसे किया, उसने भी मेरे साथ ऐसे किया, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया, उसने जो भी किया हो, अगर हम इस कैटेगरी में आ गए तो हम क्या करेंगे। अगर पुर सिरात पे भी जाके हमारी जान नहीं बचती तो सोचेंगे मामलात सिर्फ दुनिया की हद तक नहीं है, ये मामलात बड़े आगे तक जाने हैं, ये हमारे मरने के साथ ख़त्म नहीं हो जाने, ये कहाँ तक हमें हॉन्ट करेंगे। कि पुल सिरात पे भी खड़ी भी है कताए रहमी के, इसको पकड़ो, इसने, इस बंदे ने तोड़ा था रिश्तों को। तो रिश्तेदार कितने भी बुरे लगे रिश्तों के साथ, यानी ये भी इवन यहाँ तक है कि अगर कोई एक साल तक बात नहीं करता अपने रिश्तेदार से तो ऐसे ही है जैसे उसको खून कर दिया उसने, इतनी हद तक है। और हमें तो सदियों सदियों गुजर जाती हैं और कोई बातचीत नहीं है, कभी कोई रबता नहीं है, बोलचाल बंद है, क्या वो एक पुरानी बात को लेके हम बैठ जाते हैं, उसको छोड़ते ही नहीं है। माँ अपने बच्चों को कह रही होती हैं कि दूध नहीं बख्शूंगी, तू मेरी तरफ से आक है, तू मेरी तरफ, मेरा कुछ नहीं लगता, ख़त्म मेरा और तेरा रिश्ता, यानी यहाँ तक भी हो जाता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इवन आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि झूठ वैसे मना है लेकिन अगर ताल्लुकात को जोड़ना है लोगों के, उनमें सुलह करानी, तो उसमें झूठ भी बोलना पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कज़ाब नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह कराता है। जो सुलह कराने के लिए अगर कोई झूठ की बात बोल देता है, ये कि नहीं उसने तो नहीं कहा था, मैं आपको खुद ही ये बात बता रही हूँ, उसने तो नहीं ऐसे किया था, तो मैं तो ये आपको अपने तौर पे कर रही हूँ, या उनको मिलाने के लिए कोई ऐसी बात बोल देता है जिससे दोनों के दिल आपस में जुड़ जाएं और ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, तो यहाँ पे ठीक है, हम यहीं पे आकर सच बोलते हैं। हमें सच बोलने का जो शौक होता है ना, वो यहाँ पे ज्यादा होता है, मैं तुझे बताती हूँ उसने क्या कहा तेरे बारे में। और इसके साथ ही दूसरी जो आयत में कताए रहमी और अगली चीज जो है वो साथ ही है, एक ही आयत में है सूरह राद में, और वो है फसाद करना, फसाद फैलाना। हम सोचते हैं यही फसादी हैं जो कि दहशतगर्दी करें, जो बम फाड़ें, वो तो फसादी हैं ही, वो हम जो फसाद मचाते हैं, जहाँ पे तलाकें कराना, लोगों के घरों को तोड़ना, लोगों के आपस में रिश्तों को ख़राब करना, इधर टेलीफोन कर दिया उसको ये बातें, उधर फ़ोन किया उसको कुछ और बातें, क्योंकि हमारे पास फारिग टाइम बहुत होता है, अब ये ज़ुबान तो रुकती नहीं, तो वो कहीं ना कहीं तो चलेगी, अगर खैर की बात में नहीं चलेगी तो किसी शर में चलेगी। तो उसके अंदर क्या है कि ये फसाद इतनी बुरी चीज़ है, फसाद करना, मियाँ बीबी को, उनकी बीबी को उस मियाँ की कोई बात बुराई की बता दी, उसको उसकी बता दी, क्योंकि छोटी सी मामूली सी बात आपको कहती। मसलन किसी औरत से आपने ये पूछ लिया, अच्छा तेरे मियाँ ने तुझे एनिवर्सरी पे क्या दिया था? अब उसको तो बेचारी को कुछ भी नहीं मिला। अच्छा कुछ नहीं दिया, अरे देखो जरा कैसी वैसे, कितनी गलत बात है, इतना कुछ होते हुए तो भाई साहब ने इतना नहीं सोचा। लो अब वो जो, अब आप तो उठ के बात करके चले गए, वो सोचती रह गई कि हाँ वाकई तो देखो ये बात तो इसने सही की है। वैसे आज मियाँ घर आया तो उससे लड़ाई शुरू कर दी। आप कभी सोचते नहीं है कि बाज दफा हमारी कोई ऐसी बात होती जो हम सोचते, ये नहीं सोचा होता कि मैंने फसाद करना है, लेकिन हम जब वो बोल रहे होते हैं तो हम दूसरे के घर को तबाह कर रहे होते हैं। हम जब बोल रहे होते हैं तो हम उनके दरमियान रंजिश डाल रहे होते हैं। वैसे अच्छा नहीं किया वैसे कि तुम्हारे मियाँ ने ऐसा किया, अच्छा नहीं किया वैसे, अच्छा तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करते, उनको कोई ख्याल नहीं है। बाज दफा हम बहुत लोगों के प्यारे बनते हैं और अपने बनते हैं और अपनायत में ये कह रहे होते हैं। हम ये नहीं सोचे कि हम कोई दुश्मनी में नहीं कह रहे होते उससे, हम अपनी तरह से बड़ी अपनायत में कह रहे होते कि मुझे तो तेरा बड़ा ख्याल है। अच्छा तेरे ससुराल वाले तेरा इतना भी नहीं ख्याल करते, तेरी सास तेरा ये नहीं सोचती? अब वो क्या कहेगी, वो तो पहले ही दिल के अंदर एक बात थी, अब उसको और आग लग गई, आपने तेल डाल दिया और घर में फसाद शुरू हो गया। इसी तरह फसाद फैलते हैं छोटी छोटी बातों से, आप चिंगारियों के ऊपर तेल डाल देते हैं और आग भड़क पड़ती है। ये हमारे फसाद के तरीके, इससे तो बेहतर है ना कि अपने अपनी जुबान को बंद ही रखें, खैर की बात बोलें वरना ना बोलें। हमें क्या जरूरत है ऐसी हमदर्दी करने से जिससे दूसरों के घर में फसाद पैदा हो, ऐसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तो वो लोग भी जो के फसाद मचाते हैं वो भी अल्लाह की लानत के मुस्तहक हो जाते हैं। और भी कुछ लोग हैं जो अल्लाह की लानत के मुस्तहक होते हैं, उनमें वो जो बिद्दतों को रिवाज देते हैं, बिदआत, क्योंकि बिद्दत जहां पे आती है सुन्नत खत्म हो जाती है। हम सोचते हैं बिद्दत को क्या सोचते हैं, तो क्या हो गया, कोई बुराई थोड़ी है, ये कोई बुरा काम थोड़ी है, मैं एक अच्छा ही काम कर रही हूँ। अच्छा काम करें, लेकिन आपने दीन में नए तरीके इजाद कर दिए, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और कोई एडिशंस की, कोई सब्ट्रैक्शंस की, मुकम्मल है। आपको उस मुकम्मल दीन के ऊपर क्या इत्मीनान नहीं है कि हम कहें कि हम अपनी तरफ से फिर कोई और चीज़ उसके अंदर शामिल किए जाए, और हम सोच के कि ये भी नेकी है, ये भी नेकी है, अब मैं, अब ये आपके रजब आ गया तो अब मेराज के दिन मैं रोज़ा रखूंगी और उस रात को मैं इबादत करूंगी, तो इबादत ही कर रही हूँ ना, मैंने क्या गलत किया? तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में कितनी दफ़ा मेराज आया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मेराज मक्का में हुई थी, उसके बाद कितने साल तक मेराज की रात आती रही? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको खास करके इबादत की? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका रोज़ा रखा खास करके? लेकिन हम, ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल है, इसी तरह की बेशुमार मिसालें जो कि हमने दीन में एडिशंस कर रखी हैं और उसको हम यही नाम देते हैं कि ये नेकी ही तो है, क्या मसला हो गया, आप हमें नेकी से रोकते हैं। इसी तरह कब्रों पर मस्जिदें बनाना, ये भी लानत के मुस्तहिक कर देती है इंसान को, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की लानत तो यहूद व नसारा पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सज्दागाह बना लिया, उस पर मस्जिदें बना ली। और मस्जिद बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ज़रूरी को मस्जिद ही तामीर की, क्योंकि किसी कब्र को सामने रख के इबादत करना और उसके आगे सज्दा करना, उसके आगे खड़े होकर उसके सामने ऐसे हाथ फैलाना, ये सब क्या है? सजदा का बनाना, मस्जिद बनाना ही। और बाज़ लोग कहते हैं हमारे कोई फौत हुए हैं हमारे पेरेंट्स, तो अब हमने उस जगह पे मस्जिद बना दी है। ये अलाउड नहीं है कब्र के ऊपर मस्जिद बनाना। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े हदीस है कि इनके ऊपर लानत है, इन लोगों ने बनाई है, यानी तुम ना ये ऐसे काम शुरू कर देना। और कितनी ही कब्रें हैं जिनके ऊपर आप मस्जिदें देखते हैं। किसी ने मुझे बताया कि हमने इस तरह से किया अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो अपनी तरफ से एक मोहब्बत का इजहार था कि इनकी कब्र के ऊपर मस्जिद बनी होगी तो लोग यहाँ पे आके चलो एक इबादत करेंगे, तो ये दुरुस्त नहीं है, ये भी लानत का मुस्तहिक ठहराती। इसी तरह वालदैन पर लानत करना, वालदैन पर लानत करने का मेरे उस वक्त ज़माने में तो कोई नहीं सोच सकता था, आज के वक्त में फिर भी ऐसे लोग हैं जो वालदैन को गालियाँ भी देते हैं और उनके ऊपर लानते भी करते हैं। लेकिन उस जमाने में ये इतनी यानी ऐसी बात थी जो कभी किसी ने की नहीं थी। तो एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, कौन अपने वालदैन को लानत कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी के वालदैन को लानत करते हो तो वो तुम्हारे वालदैन को लानत करेगा। तो ये ऐसे ही है कि तुम अपने वालदैन को खुद लानत कर रहे हो। इसी तरह समझ लेना जैसे कि हमें कहा गया कि हम मुशरिकों के खुदाओं को गाली ना दें। वजह क्या है? कि वो पलट के तुम्हारे खुदा को देंगे, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, उनके तो झूठे सब है, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। हम नहीं चाहते कि हमारे अल्लाह के बारे में कोई ऐसी नाजीबा बात करे, तो हम नहीं गाली देंगे। इसी तरह जब किसी के वालदैन को लानत करोगे और बुरा भला करोगे तो वो तुम्हारे वालदैन के ऊपर कहेगा। किसी को माँ बहन की गाली दोगे तो वो तुम्हें भी वही गाली देगा। तो ये उसकी जुबान खोलना है कि आप जब किसी को कर रहे हैं तो उसकी जुबान आप खोल रहे हैं कि वो भी आपको दे। तो इस हद तक मत जाओ। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उस शख्स पर लानत की है जो अपने वालदैन पर लानत करता है। इसी तरह वो लोग भी जो जमीन पे किसी की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा कर लेते हैं, उनके ऊपर भी लानत की गई है कि यानी किसी की जमीन हथिया लेना, किसी की जमीन यानी हत्ता के इतना तक कि आपकी जमीन की अगर ये बाउंड्री है तो आपने यहां पे जाके अपना वो कर दिया, मार्क कर दिया कि मेरी यहां तक है जमीन, तो कयामत के दिन 7 जमीनों का तौक पहनाया जाएगा ऐसे शख्स को जिसने किसी की जमीन हथियाई होगी। यानी क्या? 7 जमीनों का तौक उसको पहना दिया जाएगा जिसने दूसरे की जमीन हथियाई होगी। इससे अंदाजा कीजिए कि ये भी मामूली बात नहीं है कि कोई बात नहीं इतनी सी जमीन हथिया ली, किसी का प्लॉट खाली पड़ा हुआ था उसके ऊपर कब्जा कर लिया, कोई मकान खाली था किराए पे लिया और उसके बाद उसी को कब्जा में ले लिया कि ये हमारा ही हो गया। किसी की इतनी सी जमीन, बालिश भर जमीन के ऊपर भी अगर 7 जमीनों के तौक होंगे तो यहाँ पे तो बड़ी बड़ी जायदादें हड़प कर जाते हैं। इसी तरह जब देखा कि खानदान के अंदर कोई किसी का पूछने वाला नहीं है तो उनकी जमीन हड़प कर दी, यतीमों की जमीन है तो वो खा ली। ये सब जमीनें यानी दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेना इस कदर बड़ा गुनाह है कि उसके ऊपर लानत भेजी गई है। फिर इसी तरह एक और चीज़ जिसको हमने शायद कभी ना समझा हो कि ये भी मलऊन बना देती है, वो ये है कि दीन को छोड़ के दुनिया के पीछे भागना, दीन को छोड़ के दुनिया के पीछे भागना। आज देखो सारी रेल पेल क्या है, दुनिया की ही पीछे है। दीन के लिए कोई ना वक्त निकालने को तैयार है, ना कोई कोशिश करने को तैयार है। मेहनत करना तो छोड़े ही, जरा सी भी कोशिश करने को तैयार है। मेहनत बहुत दूर की बात है, हार्ड वर्क ये वर्ड जो है ना, ये अब दीन के लिए है ही नहीं, अब ये सिर्फ दुनिया के लिए। अगर कोई आप खाल खाल किसी को देखे तो लोग उसको बड़ी हैरानगी से देखते हैं कि क्या हो गया इसको, पता नहीं ये ठीक भी है कि नहीं, किस तरफ लग गया। हाँ मगर दुनिया के लिए किसी को मेहनत करते हुए देखेगा तब कोई नहीं कहेगा ये किस तरफ लग गया है। आप देखते हैं लोगों को पढ़ते हुए भी, अपने कई कई साल लगाते हुए भी, दुनिया की तालीम के लिए भी। ये नहीं कि कोई वो बुरी बुरी बात है, मगर आप जब कंपैरिजन करते हैं ना तो फिर ऐसे लगता है कि सारी दौड़ें एक तरफ हैं और दीन के लिए कोई दौड़ नहीं, कोई भागने वाला नहीं, कोई कोशिश करने वाला नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया की हर चीज मलऊन है, दुनिया की हर चीज मलऊन है और जो कुछ इसमें है वो भी मलून है। क्या मतलब हुआ इस बात का मलून? अब लानत का मतलब पता है ना आपको, यानी ये खैर से खाली है, ये जलील है, ये सब चीजें इनमें कोई भलाई नहीं है सिवाय, अब ये भी सुन ले, सिवाय अल्लाह के जिक्र के, और नंबर 2 उसके जिसको अल्लाह ताला अपना दोस्त बना ले, नंबर 3 दीन के आलिम के, और नंबर 4 जो दीन के इल्म को सीखने वाले हैं उनके। कितनी बड़ी फजीलत पता चलती है इससे कि जो दीन के सीखने वाले हैं, जो दीन के सिखाने वाले हैं, जो अल्लाह का जिक्र है, जो अल्लाह के दोस्त हैं, उनके अलावा सब चीज़ें जलील व ख्वार, सब चीज़ें खैर से खाली हैं। कोई चीज़ खैर वाली नहीं है यहाँ पे, कोई चीज़ भलाई वाली नहीं है यहाँ पे। तो जो इनके पीछे भागेगा उसका भी क्या हाल होगा, जो इन चीजों के पीछे भागेगा फिर वो कैसा होगा, उसका क्या हाल रह जाएगा। और इंसान यही सोचता है कि मैं अपने लिए भी बनाऊं और मैं अपनी नस्लों के लिए भी बना के जाऊं। हम ये नहीं सिर्फ करते कि मैं सिर्फ अपने लिए, अपने लिए तो शायद हमें इतना चाहिए नहीं होता होगा, लेकिन हमारी प्लानिंग बड़ी दूर तक की होती है कि हमारी जो नस्लें हैं ना उनको भी कहीं कभी कोई मोहताजी ना आ जाए, उनके भी हम ही फैसले करके जाएं, उनके लिए भी मैंने फलां फलां बच्चे के नाम पे इतना प्लॉट लगा दिया है, अब इनको कभी भी नहीं कोई सेहत की, मेरी सात नस्लें बैठ के खाएंगी, अब तब हम जाके बेफिक्र होते हैं। और उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। अब वो बात है कि आपने भी सुनी होगी वो बात कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो थे वो, उनके 11 बेटे थे और वो अपनी मौत के वक्त कितने दीनार छोड़ के गए, अब मुझे एग्जैक्ट अंदाजा नहीं मगर 20 से भी कम दीनार छोड़ के गए, जिनमें से 9 दीनार उनके कफन दफन और कब्र को खरीदने में लग गए और बाकी जो 4-5 दीनार थे वो उनकी औलाद को मिले। तो कितने मिले होंगे 11 बेटों को, क्या मिले होंगे। दूसरी तरफ एक और खलीफा बना हशाम, उसके भी 11 बेटे थे, वो जब मरा तो उसने अपने हर बेटे के नाम लाखों दीनार छोड़े, लाखों दीनार। और उसके बाद क्या हुआ, एक वक्त वो भी आया कि उमर बिन अब्दुल अजीज का बेटा खड़ा होकर 100-100 घोड़ों का सदका कर रहा है और हशाम का बेटा बाजार में भीख मांग रहा है। इंसानों के करने से औलादें नहीं बन जाती कि हमको ये छोड़ जाओ ये छोड़ जाओ। ये तो मैं एक पहली तारीख में से आपको बात बता रही हूं ना, आपके भी उस सामने होगा, मैं अपनी सामने की मिसालें भी बताती हूँ कि हमने अपनी जिंदगी में देखा है लोगों को कि कईयों के बाप हैं इतना कुछ छोड़ के गए, पता नहीं किधर ही उड़ गया और बच्चे फिर वैसे ही फिर रहे हैं। और कईयों के बाप यानी किराए के मकान पे रहते थे जब वो फौत हुए और आज बेटे हैं वो करोड़ों में। ये मैं आपको अपनी सामने की बातें बता रही हूँ। ये जो हम सोचते हैं ना कि भागो 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 इतना बना लो कि इनको भी दे जाओ इनको भी भर जाओ, हमारे मरने के बाद इनका क्या होगा, अब वो क्या होगा, वो ये फिक्र करो कि इनके ईमान का क्या होगा, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज अपने बच्चों के लिए तकवा छोड़ के गए थे। जब आप तकवा छोड़ के जाएंगे फिर अल्लाह की सुपुर्द करके छोड़ जाए, अल्लाह है उनका भी राजिक, जिसने आपको दिया वो उनको भी रिस्क देगा। ये हमें फिक्रें कितनी दूर तक की होती हैं कि बच्चे तो क्या, इनके बच्चे भी और उनके बच्चे भी, उनके लिए भी कुछ बन ही जाए तो अच्छा है, हम ही बना जाए तो अच्छा है। तो इस दुनिया की हर चीज ही मलून है। अब हम देख लें कि हम इन चार में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, हम इन चारों में से किसी में हैं, या हम अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के दीन का इल्म सिखाने वाले हैं या सीखने वाले हैं, वरना सभी चीजें मलून है। फिर अल्लाह ताला की खलकत को बदलना, जो अल्लाह ताला ने जैसे किसी को तखलीक फरमाया है उसको बदल देना। और उसको बदलने में क्या आता है, ये हदीस से आपको पता चलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला मस्नूई बाल लगाने वाले वाली और लगवाने वाली दोनों पर लानत भेजता है, और जिस्म को गोदने वाली और गुदवाने वाली, और अबरू के बालों को उखेड़ने वाली और उखड़वाने वाली, और हुसन के लिए दांतों में फासला बनाने वाली, इन सब पर अल्लाह की लानत है। यानी कौन कौन सी चीज़ें हो गई, एक ये कि हमारे बाल अगर इतने हल्के हो गए, हमने कोई विग लगा ली या हमने कोई ऐसी चुटिया मसनूई वो कर ली, कोई जूड़ा अपने बालों के अंदर लगा लिया जो आर्टिफिशियल वो होता है, चाहे वो जानवरों के बालों का हो, इंसानों के बालों का हो, किसी का भी हो, वो लगाना या ऐसी विग लगाना इसके ऊपर लानत है, और जो करके दे उसके ऊपर भी लानत है। और गोदने वाली गुदवाने वाली यानी ये जो स्किन के अंदर ये टैटूज बनाते हैं जो परमानेंट टैटूज होते हैं इनके ऊपर भी लानत भेजी, जो काम करे उसके ऊपर भी और जो करवाए उसके ऊपर भी। इसी तरह आईब्रोज के बालों को खास तौर पे कहा गया, और नहीं जिस्म में से, और आप जिस्म में से बाल निकाल सकती हैं जो फालतू बाल हैं, लेकिन आईब्रोज को शेप देने से मना किया गया। अब आप कहेंगे ये क्यों ये क्या, बस समय ना वाताना इसी में है कि हमने सुन लिया हमने मान लिया, बस हमें कहा गया इनको टच ना करो। अब कई ईमेल्स आती हैं कि हमने ये छोड़ दिया अब काम, अब ये इतनी भद्दी लग रही हैं, अब क्या हो? वो भद्दी इसलिए लग रही हैं क्योंकि हमने पहले नोचना जो शुरू कर दिया था, अब वैसे ही सबको आदत पड़ गई हमें देखने। अगर आप कुछ अरसे के लिए छोड़ देंगे तो सब उसी से यूज टू हो जाएंगे, यकीन करें किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो इंसान को खुद ज्यादा फील होता है जब शीशे में देखता, किसी को भी नहीं पता चलेगा। अल्लाह ताला ने जो नेचुरल इंसान की हल्क बनाई है उसके ऊपर अपने आप को रहने दें, वरना क्या है? देखो एक छोटे से शौक के पीछे इंसान लानत का मुस्तहिक हो जाए तो समझती हूँ ये सौदा कोई नफे का सौदा है ही नहीं, ये तो बेकार सौदा है। तो ऐसी कोई भी चीज करना, ये बुखारी में भी ये रिवायत है, तो ऐसी कोई भी चीज करना इससे मना किया गया। इसके ऐसी औरतों के ऊपर लाना चाहे मर्द करें चाहे, लेकिन औरतें चूंकि ज्यादा करती हैं तो ऐसी तमाम लोगों के ऊपर लानत है अल्लाह की। अब कुछ लोग कहते हैं अगर हस्बैंड के लिए किया जाए, मैं तो समझती हूँ अल्लाह को नाराज करके ना किसी की रजा नहीं पाई जा सकती। अगर आप सोचते हैं कि अल्लाह को नाराज कर लूंगी और हस्बैंड मेरा खुश हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उस हस्बैंड को भी नाराज कर देगा, लेकिन अगर आप अल्लाह को राजी करोगे ना तो अल्लाह आपके हस्बैंड के दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल देगा, क्योंकि दिल अल्लाह की दो करीम उंगलियों के दरमियान है, जिधर चाहे फेर दे। इस चीज की फिक्र ना किया करें कि वो उसके दिल में मेरे लिए नहीं मोहब्बत रहेगी। अगर ऐसा होना होता तो जितनी औरतें आईब्रोज बनाती उनके हस्बैंड तो उनके कदमों में ही रहते फिर, लेकिन ऐसा नहीं है आप देखते। तो ये मोहब्बत किसी ये आईब्रोज बनाने और इनसे नहीं होती, ये अल्लाह डालता है जिसके दिल में वो चाहे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शौहर के दिल में आपके लिए मोहब्बत हो तो अल्लाह से मोहब्बत मांगें कि अल्लाह ताला इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, और आप अल्लाह की फरमा बरदारी कीजिए, अल्लाह ताला खुद ब खुद उसको आपसे राजी कर देगा। जब अल्लाह राजी होगा ना तो उसको भी अल्लाह ने राजी करना है, वरना आप नाराज करके देख लें, आज नहीं तो कल आपका हस्बैंड आपसे नाराज ही रहेगा। अल्लाह को जिसने नाराज किया होगा तो कहीं खैर नहीं मिलती। फिर और कौन से काम है? ये कुछ ऐसे काम है जो कि औरतों से मुतल्लिक हैं जो उनको खास तौर पे समझने चाहिए। कोई आदमी अगर अपनी बीवी से खिलाफ फितरत फेल करता है या पीरियड्स के अंदर उसके साथ ताल्लुक कायम करता है तो उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत है। यानी कोई आदमी जो अल्लाह ताला ने जिस तरह से औरत को फरमाया कि तुम्हारी खेती है, निसाउकुम हरसुन लकुम, तुम्हारी खेती है तुम्हारी औरतें, जो जायज़ अल्लाह ने रास्ता रखा है उसके अलावा उसकी दुबर से उसके साथ हम बिस्तरी करना, ऐसे इंसान पे लानत भेजी गई है। और पीरियड्स में भी कितना हिस्सा औरत का जायज़ है आदमी के लिए, जो यानी समझ लें नाफ से ऊपर तक का हिस्सा, इससे नीचे तक का हिस्सा आदमी के लिए जायज़ नहीं है। औरत को चाहिए कि उसको जब पता हो तो वो अपने शौहर को इस काम से मना करे। अगर वो नहीं बाज आता किसी तरह उसको बहला के किसी और उसमें लगाए, लेकिन उसको ये काम ना करने दे और इस काम में शामिल ना हो कभी भी। तो ये दोनों चीज़ें नाजायज़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपनी बीवी को दुबर से आता है वो अल्लाह के यहाँ मलऊन है, लानत ज़दा है वो अल्लाह के यहाँ। और इसी तरह अगर कोई औरत अपने शौहर को हक़ ज़ौजियत से इनकार करती है, यानी उसका शौहर उसको बिस्तर पे बुलाए और औरत बिला कोई बग़ैर किसी उज़र के, यानी ना बीमार है ना उसको कोई पीरियड का मसला है ना उसको कोई और मसला है, बस ऐसे ही कि बस मैं नहीं, तो ऐसी औरत के ऊपर भी हदीस में आता है, हदीस ही आपके सामने रख देती हूँ बुखारी की है, कि जब खाविंद अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाता है और वो उसकी बजावरी से इनकार करती है बगैर किसी शरई उजर के, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत के ऊपर लानत भेजते रहते हैं। सुबह तक फरिश्ते उस औरत के ऊपर लानत भेजते रहते हैं क्योंकि ये शौहर का हक है। अगर औरत उसको ये हक नहीं देती तो क्या होगा, वो आदमी किसी बुराई में पड़ सकता है, वो कोई ऐसी चीज़ें देखेगा या किसी और औरत के पास जाएगा जो उसके लिए हराम है, या कोई ऐसे काम करेगा खुदा ना खास्ता जो हराम है, जिना में पड़ सकता है, तो उसका इल्ज़ाम किस पे होगा, इस औरत के ऊपर, जिसको जिसके ऊपर लाजिम था कि आई अपने शौहर का हक पूरा करती ताकि वो बुराई से बच जाता। ये औरत का काम है कि उसको इस बुराई से बचा के रखते, लेकिन जब वो हकूक नहीं अदा करती और शौहर को कहीं और उसकी नज़रें घूमने लगती हैं, तो फिर ये औरत के ऊपर गुनाह आता है, इस वजह से औरत लानत ज़दा होती है। फिर आप देखें, क्योंकि औरत के अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि मर्द के अंदर होती है, औरतें इस चीज़ के अंदर, मतलब उनके अंदर ये कमी कम होती है ये जज्बा, जितना के आदमी में होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उस तरह बिल्कुल ही डाई डाउन होने लगता है, लेकिन उस वक़्त भी औरत को चाहिए कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, इसको काम को ये नहीं समझे कि ये क्या मुसीबत है ये आदमी इस तरह। बहुत सारी ईमेल्स मेरे पास आती हैं जिसमें ये होता है कि मेरे हस्बैंड डिमांडिंग हैं, ये हैं ये हैं, और उनको बहुत गुस्सा होता है उन औरतों को अपने हस्बैंड्स पे, लेकिन फिर एंड ऑफ द डे क्या है, यहाँ तो हम कहें अपने शौहर को कि जाओ आप दूसरी शादी कर लो, वो भी नहीं हम कहना चाहते। अब अगर नहीं ये कहना चाहते तो फिर आप खुद उसकी ज़रूरत को पूरी करो, और अगर आप नहीं पूरा कर रहे तो फिर गुनाहगार आप भी हो रहे हैं, उसको भी कर रहे हैं। तो जब जैसे उम्र, जैसे मैंने कहा, बढ़ती जाती है, तो औरत के अंदर चूंकि ये जज्बा कम होता जाता है, अब उसको क्या चाहिए। शुरू में तो क्या होता है, मर्द और औरत दोनों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये चीज काम चल जाता है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है चूंकि औरत का जज्बा कम हो जाता है, अब जब वो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए करेगी, ये समझेगी कि मुझे इसके ऊपर भी अजर मिलेगा, तो तब काम आसान हो जाएगा, उसको एक नेकी समझ के करे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान को, आदमी को अपनी बीवी के साथ अमले ज़ौजियत करने पे भी अजर मिलता है। सहाबा बड़े हैरान हुए कि ये कैसे, ये तो मतलब हमारा एक बहुत ऐसे पर्सनल काम है, इसके ऊपर कैसे ये कोई सवाब का काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों, अगर आदमी कहीं और जाके ये काम करे क्या उस पर गुनाह नहीं होगा। तो जो अपनी बीवी के साथ अमले ज़ौजियत करेगा तो उसके ऊपर उसको अजर है कि वो अपने घर के अंदर ही रहा, उसने अपनी बीवी के साथ ही अपनी हाजत पूरी करी। इसी तरह औरत भी ये समझे, चाहे इंसान का दिल कितना ही नहीं चाह रहा हो, फिर भी ये सोचे कि अल्लाह तेरी खातिर सिर्फ ये कि तू मुझे इसके ऊपर अजर देना बस, क्योंकि मैं अपनी नहीं, अपनी रजा के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। तो तब आप इसको भी अगर नेकी समझेंगे तो आपके लिए आसान होगा, अगर नेकी नहीं समझेंगे तो फिर ये एक बोझ है, एक मसला है। इसी तरह वो औरतें जो मर्दों की मुशाबहत करती हैं, और वो मर्द जो औरतों की मुशाबहत करते हैं, उनके ऊपर भी लानत है। यानी ऐसा बनना, कई लड़के आजकल ऐसे हो जाते हैं कि वो चाल ढाल में, ड्रेसिंग में लड़कियों की तरह, उसी तरह के बाल कर लेते हैं, उसी तरह के, इसी तरह कई लड़कियां होती हैं। हमारे मुल्कों में तो ये भी तक रिवाज था कि अगर 6-7 बेटियां हो गई तो एक को फिर एंड वाली को फिर लड़का बना देते, वो कहते ये टॉम बॉय है, उसको वैसे ही कपड़े पहनाते लड़कों वाले, वैसे ही बाल काट देते, उसको वैसे ही चीज़ें कराते कि नहीं बस ये अब बेटा है हमारा। तो इसके ऊपर लानत भेजी गई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। लड़कियां लड़कों की तरह एक्शन शुरू कर दें, लड़के बन बन के दिखाएं, लड़कों वाले काम करें कि हम तो लड़की है ही नहीं है, हमें ये चीज़ें नहीं पसंद, हमें लड़कों वाले हमें शौक है, ये चीज़ किसी तरह भी जायज़ नहीं, इसके ऊपर भी लानत भेजी गई। अब आप ये देख लें कि ये चीज़ें कितनी कॉमन हो गई, ये कितनी इस चीज़ को समझा जाता है कि नहीं ये तो नेचुरल है, अगर कोई लड़का लड़की बन रहा है ये इसके अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचुरल नहीं है। इल्ला ये कि कोई हिजड़ा ही हो तो वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज ये नेचुरल नहीं होता। तो इसलिए इन चीज़ों को बताना चाहिए कि ये चीज़ किसी तरह भी जायज़ नहीं है। इसी तरह जो सूदी कारोबार करता है, सूद को लेने वाला, देने वाला, इसको लिखने वाला, इसकी गवाही देने वाला, इन सब के ऊपर ही अल्लाह की लानत है, और अल्लाह ताला इससे हमें महफूज रखे, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे कुछ और नहीं तो फिर इसकी डस्ट तो पहुँच ही जाती है। वो ही था कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जो नहीं भी लेगा उसको गुबार तो पहुँच ही जाएगा। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें लानत भेजी गई है। اور عملے قوم لوط کرنے والا، یہ بھی وہ چیز ہے جس میں لعنت بھیجی گئی ہے. چاہے کوئی گورنمنٹ اس کو کہہ دے، کوئی کنٹری کہہ دے کہ یہ جائز ہے، لیکن جب ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہے، تو آپ سوچ لیں یہ جائز کیسے ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا وہ ملعون ہے، وہ لعنت زدہ ہے جس نے ان کے جیسا عمل کیا جو کہ قوم لوط کا تھا. اور یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے، چاہے وہ مردوں کے درمیان ہو چاہے وہ عورتوں کے درمیان ہو، دونوں کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے. اسی وجہ سے لوگوں کو جلدی شادیاں کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کی چیزوں میں کوئی نہ پڑے اور اپنے حلال راستے سے اپنی ضرورت کو پوری کیا جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں چور کے اوپر اللہ کی لعنت کہی گئی ہے، اور چوری چاہے ایک روپے کی ہو چاہے ایک لاکھ کی ہو، وہ چوری ہی ہے. جس نے کسی کی چیز اٹھائی، چاہے ایک انڈا ہے چاہے ایک رسی ہے یا چاہے زیور ہے، اس کے اوپر لعنت ہے. اب آپ سوچ لیں کہ جب وہ لعنت کا مستحق ہو گیا اور وہ خیر سے محروم ہو گیا، تو وہ چیز جو اس نے اٹھائی ہے وہ اس کو کیا کام دے گی؟ جو وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا اس کو وہ چیز کیا کام دے گی؟ پھر رشوت لینے والا اور دینے والا، دونوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے. لینے والے پہ تو لعنت ہے ہی، دینے والے پہ بھی لعنت ہے. بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے سود ہے، تو سود لینے والے پہ تو لعنت ہے لیکن ہم تو صرف دیتے ہی ہیں نا، تو دینے والے پہ بھی لعنت ہے. جیسے کہ شراب پینے والے پہ بھی لعنت، پلانے والے پہ بھی لعنت. جو لانے والا ہے، جو کشید کرتا ہے، جو مزدور ہے جو اس کو بنا رہا ہے، اس پہ بھی لعنت ہے. جو سرمایہ کار ہے، جس نے اس میں بزنس میں لگایا ہوا ہے اور وہ اس کو یعنی اس کے اوپر پیسہ لگاتا ہے، اس کے اوپر بھی لعنت ہے. جو اس کو وہ لے کے جا رہا ہے، ٹرانسپورٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی لعنت ہے. جو خرید رہا ہے اس پہ بھی لعنت ہے. اور جو کسی کے لیے خرید رہا ہے، چاہے خود نہیں پینی، کسی کے لیے خرید رہا ہے، اس پہ بھی لعنت ہے. 10 لعنتیں ہیں جو شراب کے ساتھ ہیں، ایک شراب کے ساتھ 10 لعنتیں ہیں. یعنی کوئی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرے گھر میں غیر مسلم لوگ آ رہے ہیں تو ان کو ہی پلانی ہے نا، وہ تو پیتے ہیں نا، چلو ہم نہیں پیتے. کسی شادی میں دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے شراب سرو کی، کہ نہیں جی ہمارے، اگر آپ لوگ آ رہے ہیں تو ہمارے آفس کے بھی لوگ آ رہے ہیں، ہمارے وہ بھی لوگ آ رہے ہیں، آپ نہ پئیں، ہم کو ہی آپ کو کہتے ہیں، لیکن ان کے لیے تو ہے نا. تو یاد رکھیں، کوئی خود نہیں بھی پیتا وہ کبھی سرو نہیں کر سکتا، کسی کو نہیں پلا سکتا، لعنت میں آ جاتا ہے جب کوئی کسی کو بھی پلائے. اسی طرح عورتوں کا بکثرت قبرستان جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار جانے کی تو اجازت دی ہے، لیکن کثرت سے اگر عورتیں یہ وتیرہ بنا لیں کہ جی اب فوت ہو گیا، میرے تو دل کو چین نہیں آ رہا، اب آئے دن قبرستان چلی ہوئی ہے، اس ایسی عورتوں کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے. اور دیکھیں یہ کتنی ساری چیزیں عورتوں سے متعلق ہیں. اس طرح عورتوں کا بین کرنا، جب کوئی اچانک، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور عافیت دے سب کے گھروں میں، لیکن کوئی اچانک کوئی ایسی خبر مل جاتی ہے کسی عورت کو، تو بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، تمانچے مارنا منہ پہ، یا اونچی اونچی بین کرنا، یا دیواروں سے ٹکرے مارنا، یہ چیز اس کو لعنت میں داخل کر دیتی ہے ایسی عورت کو. اور اس کے لیے قیامت کے دن عذاب ہے جو عورت یہ کام کرتی جب تک وہ اسے توبہ نہ کر لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں سے یہ کام جانا نہیں ہے، میری امت میں سے یہ کام جانا نہیں ہے. یہ عورتیں یہ کام کرتی رہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے مرد نہیں یہ کرتے، یہ عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے. تو جو صبر کا وقت ہے وہ شروع کا ہی وقت ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انسان اس وقت تو کپڑے بھی پھاڑ لیے، چیخے پکارے بھی، اور اس کے بعد کہہ دیا ہم تو صبر کر رہے ہیں. صبر وہ نہیں ہوتا، صبر یہ ہوتا ہے کہ جو شروع میں صدمے کے کیا جائے. اس لیے ایسے وقت میں انسان اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن ایک بتانے کی بات ہے کہ اگر کوئی کر بھی رہا ہو تو اس کو بتایا جائے کہ یہ عذاب کا سبب بنے گا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں خیر اور بھلائی سے محروم کر کے ذلیل و رسوا کر دے گی، لعنت یہی ہوتی ہے. تو وہ اللہ کی لعنت میں آ جاتی ہے ایسی عورت. اور ان کاموں کو इस तरह से हमारे माशरे में नापसंदीदा नहीं समझा जाता, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं ये तो हमारे रिवाज हैं, बाज़ लोगों के बाज़ जगहों पे रिवाज ही होते हैं और वो सोचते हैं कि इसको गम नहीं हुआ अगर इसने ऐसा नहीं किया। तो ये कितनी कभी चीज़ है हमारे दीन में और हम इसको रिवाज बना के बैठे। फिर लोगों के रास्तों में ऐसी चीज़ें डालना जिससे उनको तकलीफ़ हो, ख़ास तौर पे गंदगी डालना। जैसे हमारे मुल्कों में अगर आप नॉर्दर्न एरियाज की तरफ चले जाएं, आप चल भी नहीं सकते क्योंकि जगह जगह लोगों ने टॉयलेट किया हुआ, जहाँ पे भी बैठे वहाँ पेशाब करने बैठ गए, वहाँ पे जो भी गंदगी की, और चला भी नहीं जाता कि इंसान कोई साफ। तो रास्तों को गंदगी रास्तों में करना या सायादार दरख्तों के नीचे गंदगी करना, इससे भी कहा गया कि ये भी लानत जदा है जो ऐसा करे, और इसका किसी को भी नहीं पता। हम देखते हैं वहां पे हमारे मुल्कों में तो लोग जगह जगह बैठ जाते हैं पेशाब करने के लिए, दीवारों के साथ बैठे हुए हैं, कहीं पे भी बैठ गए जहां पे उनको जरूरत पड़ी। लेकिन और इसी तरह सिर्फ कजाए हाजत ही नहीं बल्कि कूड़ा करकट ऐसे फेंक देना कि लोगों के रास्तों के अंदर, लोगों के रास्तों में कांटे डाल देना, लोगों के रास्ते में ऐसी चीजें जो उनको जरर पहुंचाए। मिसाल के तौर पर आपने केला खाया, आपने वहीं फेंक दिया। अब आप नहीं ये समझ रहे कि जो बाद में आएगा वो कहीं स्लिप होके उसकी तो कोई हड्डी टूट गई या कुछ है। तो ये काम इंसान को लानत का मुस्तहिक बना देते। कैसे बंदा सोचता है कि देखो कि जिन कामों को हम कभी सोचते भी नहीं है कि ये इन पे भी लानत हो सकती, और हमें एजुकेट भी नहीं इस तरह से किया जाता कि ये सिर्फ ये नहीं कि ये एटिकेट्स की बात है, ये कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नाराजगी का सबब हो सकती है हमारे लिए। फिर गैर कौम की तरफ खुद को मंसूब करना कि कोई इंसान अपने बाप का नाम बदल के दूसरा किसी और का नाम रख ले, या अपनी कौम का नाम बदल के कोई और रख ले। मसलन है किसी का कोई एक ऐसी बरादरी ऐसी कौम से है जिनका जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं है माशरे के अंदर, तो अपने नाम बदल लें, अपने नाम के साथ कोई भी और नाम लगा लें, जबकि वो उस कबीले से नहीं है, उस खानदान से नहीं है, वो लोग नहीं है। लेकिन मसलन अपने नाम के साथ चौधरी लगा लेना, खान लगा लेना, या कोई ऐसे नाम लगा लेना जिससे कि उनकी ज़रा बेहतर उस माशरे के अंदर ज़रा स्टैंडिंग हो जाए, तो ये दुरुस्त नहीं है। या अपने बाप की जगह किसी और का नाम दे देना। इसी वजह से कोई अगर बच्चा अडॉप्ट भी करे तो उसको नहीं चाहिए कि उस बच्चे का के वालिद का नाम बदल के और अपना नाम रख ले कि कोई बात नहीं मैंने तो अडॉप्ट किया है ना, अब बच्चा बड़ा होगा तो इसको पता चलेगा तो फिर अच्छा नहीं होगा इसलिए मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। नहीं लिख सकते। नहीं, बायोलॉजिकल फादर का नाम चेंज करके कोई अपना नाम नहीं लिख सकता उसकी जगह। अगर नहीं है, कोई भी नाम पता ही नहीं है, उसको खाली छोड़ दो या अल्लाह का कोई बंदा अब्दुल्ला लिख दो या ऐसा कुछ लिख दो कि अल्लाह का कोई बंदा था बस। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि किसी और का नाम उसकी जगह डाल दें। फिर नाबीना इंसान को रास्ता भटका देना, उसको उसको एक तरफ जा रहा है उसको किसी और तरफ कर देना कि वो अंधा है उसको नहीं पता, ये भी एक धोखा है ना। वो सोचें एक नाबीना इंसान का तो यहाँ पे है, लेकिन बाज़ दफ़ा लोग देखने वालों को आंखों वालों को उल्टा रास्ता बता देते हैं और हंसते हैं कि हमने मजाक किया, ये भी गुनाह है। और इसी तरह किसी जानवर को बांध के उसके ऊपर निशानेबाजी की प्रैक्टिस करना, इसको भी लानत का वाला कहा गया है कि मसलन कोई बकरी बांध दी और उसके से प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने निशानों की, गुलेल लेके कर रहे हैं या कोई या राइफल से कर रहे हैं या किसी से कर रहे हैं क्योंकि वो जानवर बंधा हुआ है। सोचें इस्लाम में कितने हकूक और कितना ख्याल रखा गया जानवरों तक के हकूक का कि वो बेजुबान है, अगर वो नहीं कुछ कर सकता, तुमने निशाने की प्रैक्टिस करनी है तो तुम किसी बेजान चीज पे करो, किसी दीवार पे, लेकिन किसी जिंदा को इस तरह बांध के और शिकार की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम बाज़ दफ़ा ये जो फिशिंग है वो हमने नहीं मछली खानी, मतलब ऐसे ही क्योंकि हमें शौक है फिशिंग का, तो चलो जी निकाल निकाल के बस रखते जा रहे हैं, वो मरती जा रही हैं और ना खाना है ना कुछ है। आप उस वक्त शिकार करें जिस वक्त आपको ज़रूरत है खाने की। ऐसे जायज़ नहीं कि किसी भी जानदार को मारते जाएं तो हमें खुली छुट्टी मिली हुई। फिर तस्वीर बनाने वाले के लिए, इसी में वो पेंटिंग्स आती हैं जो जानदारों की बनाई जाएँ, या स्कल्पचर्स बनाना, या ऐसे बुत बनाना, या ऐसी ड्राइंग्स करना जो जानदारों की, ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है। और किसी मुसलमान को लोहे के हथियार से डराना, इसका मतलब क्या है कि यानी कोई छुरी है या चाकू है या आपके पास कोई पिस्तौल है या कुछ है और वो अनलॉक्ड है, तो आप इस्लाम में ये भी इजाजत नहीं है कि अनलॉक्ड को भरी हुई को मैं इनको पकड़ाना शुरू कर दूं ऐसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह देखा था लोग तबादला कर रहे थे तलवारों का, जो नंगी तलवारें थी, तो फरमाया तुम्हें मैंने इस चीज से मना किया, अगर तुमने दूसरे को देना भी म्यान में डाल के दो। आप देखते हैं फिर कितने सारे हादसे होते हैं कि वो जी वो साफ कर रहे थे तो चल गई, वो ऐसे कर रहे थे तो चल गई, वो इसी वजह से कि हम हथियार इस तरह से करते हैं कि उनको भरे हुए को अनलॉक और किसी को दे रहे हैं, किसी को पकड़ा रहे हैं, ऐसे कर उसको यूज कर रहे हैं। बाज लोग छुरी से बच्चों को डराते हैं, हाँ छुरी से बच्चों को डराते हैं कि तुमने ये नहीं किया मैं तुम्हारी जुबान काटूंगी, तो ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी। अब वो ये क्या है, हथियार से किसी की तरफ इशारा करना, इस बंदे के ऊपर भी लानत भेजी गई है। और माओ का तो उनको पता ही नहीं होता कि ये काम मना है। हाँ मैं कैंची से तुम्हारी जुबान काट दूं, ये देखो कैंची, अब उसको कैंची आप दिखा रहे हैं, ये आप इशारा भी नहीं कर सकते किसी की तरफ भी, और ना ही किसी को आप अनलॉक या ऐसे खुली भी कोई पिस्तौल है या इस तरह दे सकते हैं। अब ये भी देखें ऐसी चीज है जिसका अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता कि ये कोई यानी मना है चीज, या इसके ऊपर इतनी बड़ी वईद है लानत की। इसी तरह आखिरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि बारीक लिबास पहनने वाली औरतें, हदीस में आता है अनकरीब मेरी उम्मत में ऐसी औरतें होंगी जो लिबास पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी, यानी पहना भी हुआ है लेकिन नंगी कैसे हैं, नंगी ऐसे हैं कि या तो इतना बारीक लिबास पहना हुआ है या इतना टाइट पहन लिया है कि सब कुछ ऐसे है कि बाहर है। तो फरमाया उनके सर बख्ती ऊंट की तरह झुके हुए होंगे, कुहान जैसे बख्ती ऊंट की होती है इस तरह से झुके हुए होंगे कि इतने पीछे बंस बनाए होंगे जैसे जूड़ा या पूनी या ऊपर कर लें। फरमाया ये लानत की गई है, तबरानी में ये रिवायत है, ये इन औरतों के ऊपर अल्लाह की लानत है। और दूसरी हदीस में आता है ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, खुशबू, जबकि जन्नत की खुशबू 500 साल की मसाफत से आती है, दाखिल होना तो दूर की बात है, दूर दूर तक उनको जन्नत नहीं मिलेगी। और ये भी अफसोस ये होता है कि कितने छोटे छोटे काम है जिनके पीछे हम अपनी जन्नत को गंवाने पे तैयार हो जाते हैं, कितने छोटे छोटे काम है जिनके वजह से हम लानत लेने पे तैयार हो जाते हैं कि लानत मिल जाए मैंने ये काम जरूर करना है, जन्नत जाए तो जाए और मैं ये पहनूंगी जरूर, उससे क्या मिलता है हमें। बस शैतान ने देखो कितनी उन चीजों को अट्रैक्टिव बना दिया है, जो अल्लाह ताला को ना पसंद है ना उसको अट्रैक्टिव बना बना के दिखाएगा। आप मर्दों को तो नहीं देखते वो बारीक लिबास पहने में, उनके सबसे खुले भी लिबास होते हैं, कोई नहीं चुस्त लिबास ऐसे सिए हुए जैसे जिस्म के उनके तो नहीं होते, उनके नहीं आप देखेंगे टखनों से ऊपर उनकी पैंटें जा रहे हैं, उनको हुक्म दिया गया अपने टखनों को नंगा करो, औरतों के ऊपर जा रहे हैं, आप ये देखते नहीं इसके पीछे कौन है, शैतान है जो हमारा दुश्मन है और चाहता है वो काम करो जिसमें अल्लाह की नाराजगी, उन चीजों को अट्रैक्टिव बना बना के दिखाएगा। अब औरतों के पजामे ऊंचे होने और आप देखते हैं कि मर्दों की पैंटें, अगर मर्द ऊपर कर ले तो उसको बुरा समझा जाता है, औरत ऊपर करे तो वो अच्छी समझी जाती है और ज्यादा फैशनेबल। तो ये सब शैतान की चालें हैं इंसान के लिए, इनको समझें, मत शैतान के रास्ते पर जाओ। तो क्यों बारीक लिबास पहन के, या बाज दफा गर्मियों में ऐसे लिबास होते हैं कि अंडर गारमेंट्स भी नजर आ रहे होते हैं, तो अब आप बताएं कि क्या ये बारीक लिबास नहीं है जिनके ऊपर जन्नत चली गई, तुम्हें जहां पे गर्मी लगती है ये नहीं सोचते कि जहन्नुम की आग कितनी गर्म है, उसके ऊपर हम सबर कर लेते हैं, वो मिल जाए चाहे, क्योंकि वहां पे जिसको जन्नत नहीं मिलेगी तो दूसरी कौन सी जगह, जहन्नुम, वहां पे थर्ड प्लेस तो कोई है ही नहीं कि चलो कोई और ही जगह बीच वाली, चलो इतनी लग्जरी लाइफ नहीं भी मिली तो हम दरमियाने रह लेंगे, मिडिल क्लास बन जाएंगे, वहां पे कोई मिडिल क्लास नहीं है, वहां पे यहाँ तो एलीट्स हैं, यहाँ पे वो बिल्कुल गड़ा है जहन्नुम का। हम जन्नत छोड़ने पे तैयार हो जाते हैं सिर्फ छोटी थोड़ी सी गर्मी के लिए, या थोड़ा सा लोगों को दिखाने के लिए, लोग कह दें कि मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ, मैं बड़ी यंग लग रही हूँ, मैं बड़ी फैशनेबल लग रही हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि तूफ है ऐसी तारीफों पे भी कि अल्लाह नाराज हो रहा हो और इंसान लोगों की तरफ दिख रहा है कि आप मेरी तारीफ कर दें, आप मेरी तारीफ कर, क्या मिलेगा हमें लोगों की तारीफों से, क्यों हम इतने दीवाने होते हैं लोगों की तारीफों के, मैं किसी शादी पे जाऊं, किसी जगह पे जाऊं, किसी जगह तो लोग बस कह दें कि हाय ये तुम बड़ी अच्छी लग रही, इससे हमें क्या मिलेगा। उससे फरमाया कि ये लानत ज़दा है औरत ऐसी, और हम वो चीजें करके आराम से बैठ जाते हैं, और हमें बस ये है कि लोगों की नजरों में हम जच जाए, ये लोग भी फना हो जाएंगे और हम भी फना हो जाएंगे, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। ان کی خاطر ہم اپنی ہمیشہ کی جنت کو ہاتھ سے جانے دیں؟ یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے. اور کیا بات ہے کہ عورتوں کو یہ سودا کرنے میں, اس گھاٹے کا سودا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں نفع کا سودا کریں. اللہ تعالیٰ کا قرآن بتاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا, بتا دیا دنیا کے اندر کہ دیکھو یہ کتنا گھاٹا ہے اس میں, پھر بھی ہم لگے ہوئے ہیں اس راستے پر لگے ہوئے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. اور جتنے یہ لعنت والے کام ہیں ان سب کو ہمیں چھوڑنا ہے. اگر ہم زندگی میں کر چکے ہیں کبھی تو پھر بھی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو نا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو اگر ہو بھی چکا ہے تو بھی پرابلم نہیں ہے, ابھی بھی ہم باز آ جائیں اور توبہ کر لیں, چھوڑ دیں ان. توبہ کیا ہوتی ہے؟ یہ نہیں توبہ ہوتی کہ ہم آج کہیں کہ اچھا استغفر اللہ مجھ سے یہ ہو گیا اور پھر وہی کام کرتے رہے. توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان ان کاموں کو چھوڑ دے, ان سے پلٹ آئے واپس اور دوبارہ ان کو نہ کرے, ان پہ شرمندہ ہو کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. تو اس طرح سے کر کے اگر آپ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے, توبہ کر لیں گے, اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دے گا, بشرطے کہ ہم سچے دل کے ساتھ یہ مان جائیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اب ہم نے چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لعنت والے کاموں سے بچ سکیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والے کاموں میں ہمیں مصروف رکھے, اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں ہمیں مصروف رکھے اور ان میں ہمارا وقت لگائے جو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بن سکے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.